यरमिया अध्याय आठ, यरमिया अध्याय आठ पद एक से लेकर तीन तक। यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद् वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे, और ना वे इकट्ठी की जाएंगी ना कब्र में रखी जाएंगी, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया है जीवन से मृत्यु ही को अधिक चाहेंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब वो सूरज, चांद और नक्षत्रों की पूजा के विषय में कहता है। पद तीन मेरे भीतर कुछ जिज्ञासा जगाता है। जब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें मैंने उन्हें निकाल दिया है जीवन से मृत्यु ही को अधिक चाहेंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अंतिम शेष यहूदी जो रोमी सरकार से बचे हुए थे वे मसादा में थे। यहां आकर ये भविष्यवाणी पूरी हुई, क्योंकि उन्होंने रोमियों द्वारा बंदी बनाए जाने की अपेक्षा सामूहिक आत्महत्या की थी। वे अंतिम बचे हुए यहूदी थे जो रोमियों द्वारा तितर बितर किए जाने से पूर्व थे। यही वे शेष यहूदी थे जिन्होंने जीवन की अपेक्षा मृत्यु को चुना था। यरमिया अध्याय आठ पद चार। तो उनसे ये भी कह, यहोवा यो कहता है, जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? दूसरे शब्दों में वे यदि बंदी बनने की अपेक्षा आत्महत्या करके समाप्त भी हो जाएं, तो परमेश्वर फिर से आकर उनके साथ व्यवहार करेगा। ओह, परमेश्वर का धैर्य और अनुग्रह! यद्यपि वे विफल रहे, परमेश्वर उनके साथ निष्ठावान और विश्वास योग्य ठहरेगा और अंत में उन्हें फिर एकत्रित करेगा। यरमिया अध्याय आठ पद पांच से लेकर सात तक। जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय, मैंने ये क्या किया है? जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग में दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हरेक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। यहां तक कि पशुओं में भी स्वाभाविक बोध होता है, परंतु परमेश्वर कहता है, मेरे लोग अपने मन की पुकार को भी अनसुना करते हैं। परमेश्वर ने इस विवेक को उनमें रोपित किया है। परमेश्वर ने अपना वचन मनुष्य में बरन उनके मन में स्थापित किया है, परंतु मनुष्य तो भले और बुरे तथा उचित और अनुचित की प्रकृति को ही त्यागना चाहता है। पक्षी जो ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं और वहां प्रजनन भी करते हैं, उनकी संतान भी प्रकृति के अनुसार अपने घर को लौट आती है। परंतु यहां मनुष्य जो इनसे कहीं अधिक बुद्धि रखता है, परमेश्वर द्वारा स्थापित विवेक की भी पुकार नहीं सुनता है। यरमिया अध्याय आठ पद आठ और नौ। तुम क्योंकि कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहां रही? आप कैसे कह सकते हैं कि आप बुद्धिमान हैं? हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है, यहोवा ने हमें व्यवस्था दी है, परंतु यहोवा कहता है सब व्यर्थ है। जहां तक कुछ लोगों का विषय आता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को व्यर्थ में ही भेजा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को व्यर्थ ही में मरने के लिए भेज दिया। जहां तक आपका प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु व्यर्थ ही है। उसका अर्थ और मान्यता तब ही तक है जबकि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यरमिया अध्याय 8 पद 11 से लेकर 16 तक। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की ये भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा, ना तो उनकी दाख लताओं में दाख पाई जाएगी और ना अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वो उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नाश करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोते थे परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुराना दान से सुन पड़ता है। बाबुल की सेना दान की ओर से होकर आ रही थी। यरमिया अध्याय 8 पद 16 से लेकर 22 तक। और बलवंत घोड़ों के हिन हिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नाश किया है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा और वे तुमको ढसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सियोन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? उन्होंने क्यों मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख में मैं भी दुखित हूं। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूं। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? परमेश्वर विलाप कर रहा है और रो रहा है। मेरे विचार में पद 20 बाइबल का सबसे दुखद विलाप है। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। वे खो गए, सदा के लिए खो गए। कटनी का समय निकल गया, परमेश्वर के दास होने के कारण तथा उसका वक्ता होने के कारण मैं आपको चेतावनी देता हूं कि कटनी का दिन लगभग समाप्त हो गया है, ग्रीष्म काल निकल चुका है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना कार्यक्रम समाप्त करने में व्यस्त है, उद्धार का दिन शीघ्र समाप्त होने वाला है। पौलुस ने कहा, रोमियो अध्याय 13:12, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। ये परमेश्वर के राज्य का नया दिन है। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आपके पास अब अधिक समय नहीं है, कटनी पूरी हो चुकी है, परमेश्वर अब स्थिति को चरम सीमा पर लेकर आ रहा है। देखिए परमेश्वर कैसे उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, कैसा आकर्षक विवरण है, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। जब परमेश्वर देखता है कि वो मनुष्य के लिए जो चाहता है उससे वो चूक जाए तो उसके दिल को बहुत दुख होता है। जब मैं उसकी सहभागिता से दूर होता हूं और उन सब आशीषों से वंचित होता हूं जो वो मुझे देना चाहता है, तब परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचती है। मुझे अपनी ही त्रुटियों के कारण दुख उठाता देखकर परमेश्वर को बहुत दुख होता है। परमेश्वर कहता है, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी।